سورت حشر پڑھتے ہیں. سورت حشر میں ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ملے گا. چلیے آیتیں شروع کر کے پھر بتاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی غالب اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال دیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گی. مگر اللہ سے رخ کر ان پر آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ تھا. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے, اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی ان کو عذاب دے ڈالتا, اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جب یہ اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت ہے. انداز سے آپ کو ہوگا پتا کہ کس طرح یہاں ایک واقعہ. بنیادی طور پہ بنو نذیر یہود کا ایک قبیلہ تھا, مدینہ کے اندر ہی رہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ان سے معاہدہ کر لیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے, لیکن بار بار انہوں نے عہد شکنیاں کی اور ایک ایسا معاملہ کر دیا کہ ایک مسلمان عورت کی بے عزتی کرنا شروع کی, کوشش کی, اس کے کپڑے کو ایسی جگہ باندھ دیا کہ جس سے اس کے سطر کے کھلنے کا خطرہ ہوا, اور ایسا ہوا. اس بات پہ یہ بات شروع ہوئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سن 4 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں نوٹس دے دیا کہ لیو دا مدینہ, تو مدینہ میں نہیں رہ سکتے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. شروع میں تو انہوں نے نکلنے سے انکار کیا, تو مسلمانوں نے ایک لشکر تیار کر کے ان پہ چڑھائی کی, لیکن ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئی. انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں, وہاں ہم نہیں تمہارے ساتھ رہتے, اور اس طرح وہاں سے نکلے, اور ان کی گھڑیاں, قلعے, قبیلے سب مسلمانوں کو مل گئے. اللہ کیسے ہم سب کو دکھا رہا ہے یہ سب کچھ. جب ہم اپنے اصولوں پہ پکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی کرے گا. اب اسی جنگ کی کچھ جھلکیاں اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں ہی ان کو عذاب دے ڈالتا, اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر رہنے دیا, یہ سب اللہ ہی کی اذن سے تھا, اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے. جنگی ضرورت کے لیے کچھ درخت کاٹنے پڑے. اتنا بڑا شوشہ اٹھایا, اتنا فتنہ گویا کہ کوئی انسان مار دیا, جیسے آج بھی ہے. کوئی عمارت گر جائے, کوئی مندر گر جائے, کوئی کچھ, اس کو اتنا بڑا شور مچا دیتے ہیں. اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں, بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ادھر سے بہت زیادہ مال ملا تھا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری محنت سے نہیں ملا, جنگ تو ہوئی کوئی نہیں, اللہ مال فیر کے طور پہ تم کو دے دیتا ہے. جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ دار اور یتام اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے, تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. یہ ہے اسلام کی خوبصورت بانٹ. اسلام چاہتا ہے کہ مال جمع نہ ہو, کنزیوم ہو. کیسے؟ کہ دنیا میں مختلف لوگوں کے اوپر, غریبوں پہ, پروجیکٹس پہ استعمال ہو. جس کے برعکس آج کے دور کا پرابلم کیا ہے, مال کو بینکوں میں رکھ دو. دیکھیے آپ کے کام آئے یا میرے کام آئے, یہ اللہ کے کام ہے. تین مصرف ہیں مسلمان کے پاس مال ہونے کے. میری ضرورت پوری ہو جائے اگر مجھے پڑے زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ, میرے کسی رشتہ دار, بھائی بہن, چچا, ماموں, خالہ, کوئی دوست رشتہ دار جن کو ضرورت ہے تو میں ان کو دے دوں اپنی ضرورت سے جو زائد ہے. تیسرا صورت یہی ہے کہ پکڑو تو اللہ کو کہو کہ اللہ یہ میں نے تیرے گھر میں رکھوا دی ہے, ہاں اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ایسا کروں گا. یہ تین مصرف ہے, دیٹس اٹ. بینکوں میں جو مال رکھا ہوا ہے یقین کریں وہ گھن لگا ہوا وہ مال ہے, جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ناروے کے اندر ہم نے وہ دکھائی بھی تھی ایک سلائیڈ, ایک دفعہ بنی بھی کہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں, مجھے لگتا ہے لیگت کے پیج کے اوپر ہے, کہ ایک دفعہ لاکرز میں شاید کیڑے گھس گئے تھے تو انہوں نے ملینز کرون کھا لیے, پتہ ہی نہیں چلا اندر ہی اندر سب ہوا, اور جب کھولا تو وہاں برادہ تھا. تو یہود کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ स्विस बैंकों में उनके मिलियंस डॉलर रखे थे और रातों रात उनको दुम दबा के भागना पड़ा। इस्लाम को ये बात बिल्कुल नहीं समझ आती कि मुसलमान के पास एक्स्ट्रा माल हो वो और उसके किसी अकाउंट में पड़ा हो, ऐसे ही पड़ा है। बैंकों को सूद दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन तसल्ली ये पड़ा हुआ है। ये है असल सूरतें, आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन पीछे सूरह हदीद में भी आपने यही मैसेज लिया था कि अपने एक्स्ट्रा को अल्लाह में डाल दो। अब आप कहते नहीं, अल्लाह को दे दिया तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, तो क्या अल्लाह नहीं देगा, वो भी दे सकता है। ऐसे ऐसे खूबसूरत साथी हैं माशाल्लाह कि जो अपनी सारी जमा सेविंग जो होती है ना वो लेके स्कूल में आ जाते हैं, कहते हैं इसको स्कूल के अकाउंट में डाल लें, साथ ही प्लेज फॉर्म होता है उस पर साइन करते हैं कि ये हम स्कूल के पास रख रहे हैं, आप लगाइए जिधर लगाना, जब हमें जरूरत पड़ेगी या कभी भी पड़ेगी, कोई साल का, कोई 6 महीने का, तो हम वापस ले लेंगे। और यकीन करें कहीं उन्हें आज तक नहीं लिया। ऐसे उनका माल एनरोल हो रहा है इधर से उधर, उस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में, उधर जाता है, ये है वो। और उनका मैं जिस दिन वो, हम खुद उनसे पूछते हैं, जब हम उनसे वो डेट लिखी होती है उस पर कि कब वापस करना है, तो जब वो डेट आने वाली होती है तो हम फिर अपने स्कूल से उनको फोन कराते हैं कि आपका माल रखा हुआ है, आपका कर्जे हंसना है स्कूल के नाम पे, आप ले लीजिए। तो वो अच्छा नहीं, अभी नहीं जरूरत है, 1 साल का और आगे कर दो। एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट चलते जाते हैं। ये कौन करता है? जिसका अंधा एतमाद होता है। ये ट्रस्ट जब तक अल्लाह पे नहीं होगा ना, हम कभी नहीं बचेंगे। कईयों ने इस तरह मिलियंस दिया होता है कि जब अगर हम ना रहे तो या स्कूल का, हमें हमें लेना पड़ा हम ले लेंगे, ना लिया तो ना, अपने घर प्लेज में दिए हुए। कभी आप सोच सकते हैं ये तब्दीली कहाँ से आती है? ये कुरान से आती है, मांगने से नहीं आती। और यही खूबी सहाबा की, जब लोग देखते थे ना कहते थे अनो मिनो कमा मन सुफहा, बेवकूफ समझते थे। देखिए कारोबारी शख्स तो बेवकूफ कहेगा ना आपको कि आप अपना माल पकड़ के किसी जगह रखवा दें, वो कहते हैं इसको लगाओ बैंक में, देखना 20-25% महीने का आएगा, कारोबार में लगा दो इतना आएगा, उतना ही डूब जाएगा। अल्लाह को देते हुए हम सोचते हैं डूबेगा, हालांकि वो नहीं डूबता। अगर यहाँ कोई वापस ना भी मिले या कोई ना भी ले तो वहां तो मिल रहा है ना। तो जिन जगहों पर रखा है, कई दफा आप इन्वेस्ट करते हैं, कई चीजें इन्वेस्ट की होंगी, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डूबी, एक पैनी वापस नहीं आई। तो यही बात अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि देखो जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलते हो, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, तो फिर तुम्हें अल्लाह के साथ वो ताल्लुक शुरू हो जाता है जो हकीकत में इंसान को अपनी जात से होता है। और ये देखिए, इसको बड़ा करके देखे तो ये बिल्कुल वही है जैसे हम बैंक में पैसा क्यों रखाते हैं। कई लोगों का पे चेक जाता ही सीधा बैंक में, क्योंकि ट्रस्ट है बैंक पे, लेकिन इतना भी ट्रस्ट अल्लाह पे नहीं है। बैंक पे ट्रस्ट है कि रात को भी जाएंगे, एटीएम से निकाल लेंगे, हालांकि उनकी लिमिट होगी, हो सकता है संडे को आपको वो ना ही कुछ दे और दे भी दे, लेकिन अल्लाह पे इतना भी एतमाद नहीं है हमारा मुसलमानों का कि अगर आज हम अल्लाह के लिए दे ही दें। अबू बकर ने तो देते वक्त कुछ नहीं कहा कि ये वापस कब मिलेगा, प्लज के तो क्या आप बताइए, अबू बकर भूखे रहे, अल्लाह ने उनको उतना ही और दे दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मक्का से मदीना की तरफ गए, सारा कुछ ले लिया उनके पार्टनर्स जो थे बिजनेस के, कहेंगे जाने तो जाओ, चीजें छोड़ के जाओ, का पकड़ो, वो डरते थे ये चीजें में रोक ना ले। और आज भी आप लोग डरते हैं, जब आप अल्लाह के लिए हिजरतें करते हैं ना, फिर आपको डर सिर्फ ये होता है कि अल्लाह ये चीज मेरे रास्ते की रुकावट ना बने, इसको किसी बंदे को भेज दे, पकड़ ले मेरे हाथ से, मुझे जाना है, मुझे निकलना है, मुझे छोड़ना है इस जगह को, मुझे कहीं और बुलाया जा रहा है। इन चीजों पर ये पाँव पकड़ती है ना चीजें, तो हम किसी जगह नहीं रहते। यही तो हमारे मसले हैं आज, किसका नहीं दिल करता अल्लाह के लिए निकले, किसका नहीं दिल करता हिजरत करें, कुर्बानियां दें, लेकिन फिर ये बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज हैं कंधों पर। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे जीने मरने के अंदाज बदल दे। अब सुनिए इस आयत को कि इस्लाम क्या चाहता है माल के बारे में, ताकि माल तुम्हारे मालदारों ही के बीच में गर्दिश ना करता रहे। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, माल माल को खींचता है, पैसा पैसे को लेके आता है, यही तो कर रहे हैं। देखिए 1,000 है ना तो शुक्र है, जरूरी है वो 10,000 में बदले, 10,000 हो गया तो अब 1 लाख, लाख है तो 10 लाख, 10 लाख है तो 1 मिलियन, इसी तरह से चलते, 10 लाख है तो ऊपर से ऊपर बढ़ाते जाते हैं। तो ये चीजें मालदार को और अमीर कर देती हैं और गरीब बेचारे और परेशान होते हैं। और वमा फरमाया वमा आताकुम रसूलु फखुजूहू, और जो कुछ रसूल तुमको दे वो ले लो, और जिस चीज से वो तुमको रोक दे इससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। बस वो माल जो इन गरीब महाजरीन के लिए है जो अपने घरों और जायदादों से निकाल बाहर किए गए, ये लोग अल्लाह का फजल और उसकी खुशनूदी चाहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत पर कमर बस्ता है, यही सच्चे लोग हैं। नोट कीजिए, वो सहाबा जो अल्लाह के दीन में अपना घर बार छोड़ के मक्का से मदीना हिजरत करके आए, अब अल्लाह ने चंद सालों में ये जंगों में जो माल हासिल हुआ कहा वापस करो इनको। गज़वे हैबर के बाद सब महाजरीन फिर अमीर हो गए थे, जो मक्का में अपने घर छोड़ के आए थे, जायदादें छोड़ के आए थे, जो अपना कैश बैंक बैलेंस सारा छोड़कर आए थे, अल्लाह ने सिर्फ 5 6 7 साल में सब वापस कर दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा दिया। उसी की बातें हो रही हैं। अल्लाह कोई रखता? देखिए, आप किसी को कुछ दें तो अगला रखता है। आपको कोई $10 का गिफ्ट है, आपकी क्या ख्वाहिश होगी उसके बाद? चलो 10 11 नहीं, 5 15 10 20 जितना दे सको, मैं भी इसको कुछ दूं, खुशी से करते हैं कि अच्छा आपने दिया तो मैं भी देती हूं। कोई आपका एक वक्त काम कर जाए घर में, रात को जाग जाए, आपके बच्चों को देख ले, आप उसकी मदद करने के लिए मुंतजर रहते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? तो क्या अल्लाह रखता है? नाउज़ुबिल्लाह, हमने अल्लाह को इतना स्टिंजी और इतना नकदरा समझा कि हम अल्लाह के लिए जिंदगी लगा दें, माल लगा दें, घर लगा दें, बच्चे लगा दें, और अल्लाह के, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला फरिश्तों इन्होंने क्या किया था। ये हैं वो दर्जे जो सहाबा को समझ आ गए थे। आज उम्मते मुस्लिमा को ये सबक पढ़ाने की जरूरत है। सिर्फ मुसलमान अपने एसेट्स जो पड़े हुए सीज्ड किसी ना काम के, 100 100 तोला सोना एक एक औरत के पास है कमोबेश, ना खुद पहनना ना पहनना सारी। और साथ एक कड़वा जुमला जो मुझे जहर लगता है, लोग कहते हैं ज़कात ही दे दे के खत्म हो जाएगा। ये ज़कात दे रहे हो तो इसीलिए बचा हुआ है 110 साल से 20 से, वो 2.5% ज़कात चुभ रही, और चुभना तो है, पहनते जो कोई नहीं तो रखा हुआ है, तो उसको जरा कहो कहीं निकालो, लगाओ किसी रास्ते में। सिर्फ एक दिल में मोहब्बत है एक चीज की, दैट्स इट। ना इस्तेमाल करना, माल को खाता है? कभी डॉलर खाए हमने, चबाए निगले? खाना तो वही है नसीब में, बल्कि और ही कम होता जाता है जिंदगी में वक्त के साथ साथ, लेकिन माल की मोहब्बत नहीं निकलती। और कमाए और इतने में दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। अल्लाह अकबर, जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे तुमको रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। नीस वो माल इन गरीब मुहाजरीन के लिए जो अपने घरों और जायदादों से निकाल बाहर किए गए। ये लोग अल्लाह का फजल और उसकी खुशनुदी चाहते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत पर कमर बस्ता रहता है। ये उन वॉलंटियर्स का हक है जो दिन रात लगाते हैं। सहाबा कराम से बड़ा कोई वॉलंटियर था? 24/7 के वॉलंटियर थे, खूब जहन चलते थे कारोबार में, लेकिन छोड़ के आगे कि अगर हम जमा तफरीकों में पड़ गए तो अल्लाह का दीन क्या होगा। मैं कहती हूँ आज हमारा बिजनेस माइंडेड तबका जो माल कमाता है ना, अगर वो सर जोड़ के बैठ जाए ना इस्लाम को और दीन को कमाने में, तो आज इस्लाम कहाँ पहुंच जाता। और आज हमारे पढ़े लिखे अफसर टाइप लोग जिनको वाकई ऑर्गेनाइजली काम करना आता है, वो आते हैं ना दीन के कामों के मैनेजमेंट संभालने, तो फिर देखिए कैसे इस्लाम जाता। आज हमारा हमारा जिसको कहना चाहिए कि ब्रेन है ना, जो हमारा ब्रेन है मुस्लिम ब्रेन, वो आज अगर इस्लाम की खिदमत पे आ जाए सब भाग जाएंगे। इनको तो मुंह की खानी पड़ेगी, इनको हो क्या क्या, क्योंकि अंदर ईमान हो और दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन हो, दिल में अल्लाह का खौफ है, जवाबदेही का एहसास है, और काम करिए वेस्टर्नाइज तरीके से, इससे बेस्ट तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है किसी टीम को बनाने का। तो दुआ कीजिए अल्लाह हमें प्रोफेशनल भी बनाए। किस रंग में? कि दीन के काम को प्रोफेशनली करें। प्रोफेशन नहीं बनाना, कारोबार नहीं है ये, लेकिन इस काम को करना मिशनरी जील के साथ है। चंद सालों में उम्मत मुस्लिमा कहाँ से कहाँ जाएगी? गोल तो बना लें, अमली तौर पे नहीं, दुआ तो करते हैं हम, तड़प तो पैदा करें। हमारे दिल में ये दर्द अगर उठे ना एकदम, तो कोई के दिल का दर्द है, इसको हार्ट अटैक हो रहा है, कोई नहीं, ये दिल का दर्द नहीं है, ये उम्मत का दर्द है, जनाब सल्लम को जवाबदेही का दर्द है। और लग पता जाएगा उस दिन उम्मत को, अगर इसी हाल में मारे गए, जिस वक्त क्यामत के दिन नबी सल्लम मैदान हशर में खड़े अल्लाह को बता रहे होंगे ये हैं मेरे मुसलमान, इन्न कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआना महजूरा। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। यही रास्पास लोग हैं, और वो इन लोगों के लिए भी है जो इन मुहाजरीन की आमद से पहले ही ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम थे। ये इन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके इनके पास आए हैं, और जो कुछ भी इनको दे दिया जाए इसकी कोई हाजत तक ये अपने दिलों में महसूस नहीं करते, और अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, ख्वाह खुद अपनी ज़ात पर इसके मुख्ताज हों। ये है वो वाक्या सहाबी का जो मैंने पीछे जिक्र किया। नबी सल्लम के पास एक मेहमान आए, भूखे थे, इत्तफाक देखे अल्लाह के नबी के पास कुछ भी नहीं था खाने को। आपने कहा कि सहाबा आप में से कोई है जो आज इस मेहमान को ले जाए? इतना आसान दौर था वो, भूखे लोग होटलों का रुख नहीं करते थे, मुसलमानों के घरों में मेहमान बन के जाते थे। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी इनको मैं ले जाता हूँ। उनको लाए, घर में बिठाया, अंदर आके बीवी से पूछा खाना है? कहने लगी सिर्फ एक बंदे का खाना। पर नोट कीजिए, ये वो खाना नहीं जो चूल्हे पे है या माइक्रोवेव में या फ्रिज में या फ्रीजर में, टोटल पूरे घर में एक बंदे का खाना है। अच्छा अब क्या करूं, क्योंकि अरब लोगों का कस्टम ये है कि जब तक होस्ट ना खाए मेहमान नहीं खाता। बेइज्जती समझते हैं इस चीज को। कहा अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेहमान तो खाएगा नहीं। कहा क्या करें फिर? कहा अच्छा ऐसा करें, बच्चों को मैं सुला देती हूँ ऐसी बहला के, वो तो सो देंगे। आपके लिए खाना रखूंगी और चिराग को ठीक करने के बहाने बत्ती बुझा दूंगी, तो आप मेहमान के साथ बैठ के ऐसी मुंह हिलाते रहिएगा, मेहमान खा जाएगा। ये किरदार आज लाइए, युसिरून अला अनफुसिहिम, अपने ऊपर दूसरों को इख्तियार करते हैं। वलौ कान बिहिम खसासा, चाहे अपने पेट चिपके, खसासा कहते हैं इतनी भूख के जिसमें पेट चिपक के अंतड़ियों को लग जाता है। खुद भी भूखे थे, कोई मैकडोनल्ड्स तो नहीं खा के आए थे, भूखे थे। और यही हुआ, मेजबान साथ मुंह हिलाता रहा और सामने बैठे मेहमान को नहीं पता चला कि वो नहीं खा रहा, क्योंकि उस दौर में आम रिवाज था अंधेरे ही होते थे, खा पी के चले गए। सुबह जब फजर पे अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, कहा सहाबी आज रात तूने क्या किया? क्या क्या किया? कहा अल्लाह ने मुझे बता दिया, और यह आयत पढ़ दी कि अल्लाह ने आपकी बात इस आयत में बता दी कि मेहमान को खिला के खुद भूखे रहे। जब तक इस दर्जे के बड़े दिल नहीं होंगे, बात नहीं होगी। अल्लाह से दुआ कीजिए हमारे दिल खोल दे। वमन युकशुख नफ्सिही फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून, हकीकत है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह हमारे दिलों का बुखल दूर कर दे। यकीन करें ये कोलेस्ट्रोल है, एक तो ब्लड का कोलेस्ट्रोल होता है ना, एक माल का कोलेस्ट्रोल होता है, वो भी बंदे की जान निकालता है। उसी से तो स्ट्रोक होते हैं और उसी से तो हार्ट अटैक होते हैं। डॉलर का रेट ऊपर से नीचे हुआ और पता चला कि एक ब्रदर वो हॉस्पिटल पहुंच गए, और उनकी बेगम गवाही देती है कि रात को वो पटक पटक स्क्रीन खोल के देखते रहते हैं डॉलर ऊपर गया कि नीचे। इतनी मोहब्बत माल से तो दिल की तकलीफ का जरिया बन गई। तो इस शुख को निकालना है, फिर इंशाल्लाह अल्लाह के काम होंगे। والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, और वो इन लोगों के लिए भी है जो इन अगलों के बाद आए, जो कहते हैं हमारे रब हमें और हमारे इन सब भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बुगस न रख। ए रब तू बड़ा रहीम और बड़ा मेहरबान और रहीम है। हाईलाइट करें, जितना आज उम्मत मुस्लिमों को इस दुआ के मांगने की जरूरत है शायद ही कभी होती। और वो क्या, दूसरे मुसलमान गिरोहों से मोहब्बत, दूसरे मजहबी उलमा से मोहब्बत, सबसे प्यार कीजिए। एक शख्स को मत मुस्लिमा का फर्ज समझते हुए अगर आप मोहब्बत कर लें तो बड़ी बात है। आप देखिए कि जो आज के उलमा है ना, उनके लिए हमारे दिल में कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, जैसी हमारी अपने खानदान के बुजुर्गों के लिए मोहब्बत होती है। आप उनको सुने ना सुने, आप उनकी स्टूडेंट बने ना बने, आप उनके मसलक जमात गिरोह से कोई ताल्लुक रखे ना रखे, इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट दीन वालों से मोहब्बत रखनी ईमान का तकाजा है। वो जो कर रहे हैं जिस तरह कर रहे हैं उनका और अल्लाह का मामला, आपको क्या लगे, और उनको डिस्कस भी ना करें। लेकिन जब दिलों में बुखल और कंजूसियां आती हैं तो यही होता है। तो दुआ करें, दुआ से पता चलता है कि गिल भी निकल जाता है, शुक भी निकल जाता है। और जितनी अपने दिल में इस दुआ की शिद्दत को रखेंगे, आप देखेंगे आपको दुनिया में कोई बंदा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सब अल्लाह के पैदा किए गए हैं।